أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جیسا کہ ہمارے تمام بہن بھائیاں موجود ہیں ماشاءاللہ، ان سب کے علم میں بھی ہے کہ ہم تفسیر قرآن کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر مخاطب کرتا ہوں. اللہ کی سلامتی ہو ان سب پر کہ جو دین کے لیے مجتمع ہوئے ہیں یہاں. جو گزشتہ ہماری کلاس تھی، اس کلاس میں ہم نے یا اس محفل میں ہم نے کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھیں، اور جو آخری حصہ تھا ورکعوا مع الراکعین اور نماز با جماعت ادا کرو، یعنی اس کا پہلا حصہ ہے واقیموا الصلاح، ورکعوا مع الراکعین کی بات کر کے ہم نے بات کو آگے بڑھایا. اب قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہ وہ بنیادی مخاطبت یا بات ہے کہ جس میں بظاہر یہ کلام جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یعنی جس بات کا تم حکم دیتے ہو یا جس بات کا تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو. یعنی تم اچھائی کا حکم تو دیتے ہو لوگوں کو، پر تنسونا انفسکم کہہ کر یہ بتلایا قرآن کریم میں کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تم بھی اچھائی کرو، اس کا تمہیں احساس نہیں ہوتا، صرف یہ احساس ہوتا کہ دوسروں کو حکم دو. یہ آج کے معاشرے کے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور دوسروں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، یا تم یوں ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے، لیکن جب حقیقت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہیں، تو وہ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا صاف کہ وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں صحیح معنوں میں ایمان سے مستفید ہونا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس بات پر تمہیں حکم دیا جائے تم اس پر عمل کرو اور تمہارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اب قول و فعل میں جو تضاد ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بجائے ترقی کرنے کے وہ نچلے درجے کی طرف چلا جاتا ہے. قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بھی بنی اسرائیل سے مخاطبت کی ہے اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، یعنی تمہیں فضیلت دی. یہاں مخاطبت براہ راست ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں. بنی اسرائیل وہ ہیں کہ جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی انہیں خبر دی، اور اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل کی ہیں جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ آیات میں کیا ہے. فضلتکم علی العالمین کہہ کر یہ بتلایا کہ تمہیں ہم نے فضیلت دی ہے سارے جہانوں میں، یعنی اتنی عزت دی اللہ نے. اور اس کے بعد پھر فرمایا اور ڈرو، واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی یہ ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ہی ان کی مدد ہو. پھر اس کے بعد یہ سارا جو تذکرہ ہے اس وقت اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ये बतलाया है इंसान को कि इंसान इस जिंदगी के अंदर नेकी कर ले, मरने के बाद अगर वो कहे कि कुछ अमल काम आएगा दूसरा, तो कोई काम नहीं आएगा, अमल वही काम आएगा जो हमने इस जिंदगी में किया है। और इस जिंदगी का अमल खालिसतन ऐसा अमल है कि जो इंसान को मजबूती देता है। इसीलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया आखिरत की खेती है। अब हम वो अन्नी फजलतुकुम में जो लफ्ज़ फजीलत है, इससे मुराद ये है कि मैंने तुम्हारे आबा अजदाद को फजीलत दी और तुम्हारे खानदान को फजीलत दी, तुम्हें इल्म बख्शा और तुम्हें मैंने मूसा अलैहि सलाम की उम्मत में पैदा किया। फिर क्या वजह है कि तुमने इस नेमत की कदर नहीं की? अल आलमीन कहकर इनकी इज्जतों को बढ़ा दिया और ये बतलाया कि अल्लाह ताला वो है कि जो मर्तबे देता है, जो लोगों को इज्जत और शान देता है, और साथ ही साथ वला युक्बलु मिन्हा शफातुन कहकर ये बतला दिया कि कोई काफिर या कोई इनकार करने वाला, काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, कोई काफिर या इनकार करने वाला ये ना समझे कि उसकी जान छूट जाएगी या वो किसी को ले आएगा कि जिसकी वजह से अल्लाह उसकी बात मान लेगा। नहीं, काफिर के लिए कोई शफात नहीं है। हाँ, मोमिन के लिए जरूर शफात है, और वह है शफात कुबरा प्यारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका इनामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए या मेरी उम्मत के अहले कबाइर के लिए मेरी शफात जरूरी होगी। यह एक मसला बहुत अहम है। उलमा ने यह लिखा है कि जो लोग शफात के मुनकिर हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शफात नहीं करेंगे या आखिरत में बख्शवाएंगे नहीं या उन्हें सिफारिश का कोई इख्तियार नहीं है, तो मसला उलमा ने ये लिखा है कि ऐसा शख्स जो इस तरह कहता है उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब नहीं होगी। और यहां पर जो शफात की नफी की गई है या शफात से मुतालिक बात की गई है, इससे मुराद ये है कि काफिर लोग, यानी इन्हें शफात नहीं मिलेगी। वला युखज़ु मिन्हा, यानी जो गुनाहगार लोग हैं काफिर लोग, इनसे कोई चीज, इनकी कोई बात ना मानी जाएगी ना इनसे कुछ लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि ये अपने गुनाहों के बदले में कोई फिदिया देने के लिए तैयार हो जाए या कुछ इवज देना चाहे तो इवज दे दे, ऐसा नहीं है। वलाहुम यंसुरून कहकर ये बतलाया कि उस कयामत के दिन में ना कोई उनकी शफात करेगा ना कोई उनकी मदद करेगा, यानी वो लात मनात उजा हुबल को, किसी को, अपने खुदाओं को, देवी देवताओं को, चाहे कितने ही पुकारे, कितने ही वास्ते वसीले दें, कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही शफात है, शफात कुबरा, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए करेंगे जिन्होंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो। यहां ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक ऐसी जात अता फरमाई है कि जिस जात को हम शफीउल उमम कहकर पुकारते हैं, जिस जात को हम कायनात की रहमत कह के पुकारते हैं, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया जाता है कि आप जिस तरफ निगाह डालते हैं उस तरफ रोशनी हो जाती है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसे इस नूर से कतरा नसीब हुआ उसे हिदायत नसीब हुई, और जो इससे रह गया वो बहक गया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसी रोशनी अता फरमाई कि जिस रोशनी को कुफार महसूस ही नहीं कर सकते थे, और कुफार के दिलों को और जहनों को ऐसा अंधेरा लग गया कि फिर वमन युदलिलहु फला हादी अला के मिसल बन गए, यानी जिसको वो गुमराह करे फिर उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। कुरान करीम की इन तमाम आयतों में तज़किरा हम देखते हैं कि कुफार का भी आ रहा है, यहूद और नसारा का भी आ रहा है, लेकिन आगे जाकर پھر قرآن کریم میں خطاب ہوتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس دن کو کہ جب ہم نے تمہیں مشکلات سے نجات دی، تمہیں ان دشمنوں سے نجات دی جو دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ تم مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاؤ، تو پھر ہم نے تمہیں بچا لیا. اور کیوں نہ بچاتا، اللہ نے نعمت کبریٰ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام پچھلی قوموں کو بھی ہدایت دی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج کی دنیا کے لیے یا صرف امت مسلمہ کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ ان کی نبوت تو کائنات کی ہر شے سے پہلے ہے. آل فرعون کہا گیا کہ آل فرعون سے کیسے بچایا. آل فرعون کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرعون امالقہ ایک نسل ہے، ایک قوم ہے امالقہ کی. ان میں ان قوم کے جو رہنما تھے، جو بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے. اس کی جمع فرائین آتا ہے، کی جمع فرائین آتی ہے. جیسے کسرا فارسیوں کے بادشاہوں کا خطاب ہے، قیصر روم کے بادشاہوں کا خطاب ہے، اور خاقان ترکوں کا خطاب ہے، اور نجاشی حبشہ کا، اور تبا اہل یمن کا لقب ہوتا ہے. اسی طرح سے فرعون امالقہ کا خطاب ہے، یعنی ایسے بادشاہ جو امالقہ میں بادشاہت کے لیے پیدا کیے گئے یا جن کے پاس طاقت ہے. اب آئیے ذرا سا فرعون کی مختصر سی تاریخ کو دیکھ لیں کہ فرعون ہے کون اور کس طریقے سے اس نے حکمرانی کی ہے. امالقہ کے متعلق چونکہ بات کی ہے، یہ ایک بہت ہی ظالم قسم کی قوم تھی، اور کہا جاتا ہے کہ لاؤ بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی. ان میں شام کے جو رہنے والے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مصر کے جو رہنے والے تھے، ان دونوں میں نسلی اعتبار سے تعلق تھا، لیکن جو مصر کے بادشاہ تھے وہ فرائنہ کے نام سے موسوم کیے گئے، یعنی فرائنہ کے نام سے پہچانائے گئے. عربی زبان میں فرائن کہتے ہیں سرکشی کرنے والے کو، جیسے تفرعن رجل، یعنی یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ سرکش ہو جائے، ڈکٹیٹر ہو جائے، غصے میں آ جائے، لڑائی جھگڑے کرنے لگے. لیکن فرائن کا لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مصر میں رہتے تھے، ان کو بھی فرائن کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نام تھا ولید بن موسیٰ بن الریان، یہ قبطیوں میں سے تھا. اس نے 400 سال کی زندگی گزاری ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ اصفہان میں ایسی نسل سے تھا جو عطر بیچتے تھے. اصفہان ایران کا علاقہ ہے. جب اس پر بہت زیادہ قرض ہو گیا، اس نے اپنا مکان چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر شام کا رخ کیا. جب اس میں بھی آسانی نہیں ہوئی تو پھر مصر میں آ گیا. اس نے ایک الٹی چال چلی اور لوگوں کو اپنی جانب راغب کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ دیکھا کہ گاؤں میں تو اتنا زیادہ اناج سستا ہے کہ پورے تربوز کی ایک بوری ایک درہم میں دستیاب ہو جائے، اتنا کھانا سستا. لیکن بازار میں تربوز ایک درہم کا ہی بکتا تھا. خیال اس نے یہ کیا کہ اس طرح سے گاؤں سے میں ایک بوری لے آؤں گا اور پھر اس کو میں بیچنا شروع کر دوں گا. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا. کئی روز تک اس طرح کرتا رہا، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ شہر میں یعنی مصر میں وبا پھیل گئی، بہت لوگ مرنے لگے. یہ قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا. مردوں کے جو رشتے دار وغیرہ ہیں اسے کہتا، وہ کہتا کہ قبرستان میں میت دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ 5 درہم تاوان ادا نہ کر دو یا رقم ادا نہ کر دو. چنانچہ بغیر سوچے سمجھے سب نے تاوان دے دیا، چلتا رہا. 3 مہینے گزرے ہوں گے کہ پوری دنیا اس کے پاس جمع ہو گئی. اس نے آہستہ آہستہ अपने इस तावान को बढ़ाया और शहर में हर एक पर तावान लगा दिया। जब लोगों ने इनकार किया कि हम तुम्हें तावान नहीं देंगे, तो उसने भी जिद लगा दी, उसने भी जिद की। चुनाचे जो बादशाह है मिस्र, जिसका लकब फिरौन था, उस तक नौबत पहुंची, उसे बुलाया गया। उसने कहा, तुम्हें किसने तावान के लिए मुकर्रर किया है? उसने कहा, मुझे किसी ने मुकर्रर नहीं किया और ना ही मुझे ये दुनिया दरकार है। ये दुनिया तो सिर्फ बहाना है ताकि मैं आपके पास आ जाता और आप तक आकर आपको बताता कि आपकी कौम बड़ी नाअहल है और आप इनसे बिल्कुल बेखबर हैं। देखो, मैंने थोड़े से वक्त में कितना माल इनसे जमा कर लिया, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसके एवज में आप मुझे सल्तनत का एडवाइज़र या मुशीर मुकर्रर कर दीजिए। मैं ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूँगा। चुनाचे उसने, उस फिरौन ने सारे काम हुकूमत के इसके सुपुर्द कर दिए। ये बड़ा ज़हीन आदमी है, इसने थोड़े से वक्त में इतने पैसे बना लिए और सब कुछ किया। उसने इतना चालाकी के साथ काम किया और साथ ही साथ अदलो इंसाफ में भी अपने मिसाल आप हुआ कि जब वो बादशाह मर गया तो यही बादशाह बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फिरौन था, उसका नाम रेहान था, लेकिन उस फिरौन और मूसवी फिरौन के माबैन 400 साल से जायद का अरसा गुजरा है। यानी उस जमाने में भी फिरौन था और बाद के जमाने में भी फिरौन। जैसे कि कुरान करीम में आया है कि यसू मूनकुम, तुमसे तलब करते हैं, सुअल अजाबी युजब्बिहूना अबनाअकुम, बुरा अजाब और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि दीगर उमूर का और दीगर उमूर के लिए वो इरादा करते हैं और वो क्या करते हैं कि युजब्बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे बच्चों को ज़ुबा करते हैं। ये मुखातबत किस तरफ है? ये मुखातबत भी जुल्म की तरफ है, जबर की तरफ है कि बच्चों को ज़ुबा करना। यहां जो अहम तरीन बात है वो ये कि अल्लाह ताला इस कुरान करीम की इन आयात के अंदर हालात को, यानी जो सोशल इश्यूज हैं, उनसे मुतालिक बात कर रहा है। क्योंकि ये वो लोग थे कि जो कुछ लोग मकानात बनाने वाले थे, कुछ लोग किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, और जो कोई खिदमत ना करता लोगों की, उससे जिजिया लिया जाता। कहा जाता है कि जो फिरौन की कौम थी या उस जमाने के लोग, ये लोग जहनी एतबार से, इनका मिजाज बहुत ज़्यादा तसाहुल का था, यानी बहुत ज़्यादा सुस्त लोग थे, लेकिन जब काम करते तो अपने काम में लगे भी रहते। हजरत वहब बिन मम्बा फरमाते हैं कि बनी इसराइल फिरौन की मुख्तलिफ खिदमात पर मुतय्यन थे। जो बहुत ताकत वाले होते हैं, वो पहाड़ों को खोद कर चट्टाने सर पर उठाकर लाते, यहां तक कि उनकी गर्दनें और हाथ जख्मी और उनकी पीठें फट जाती। बाद इनमें से थे ऐसे थे जो पत्थर और गारा उठाकर मकानात की तामीर करते, और बाद इनमें से वो थे जो कच्ची ईंटें तैयार करके इन्हें पुख्ता करते। गोया लोहार और दीगर प्रोफेशन के लोग थे, हर तरह के लोग। औरतें जो थीं वो चरखा काटती थीं, सूत बुनती थीं। तो गोया सारे उस वक्त भी प्रोफेशन मौजूद थे उस जमाने में भी। अब ये सुमूनकुम के तफसीर और ये युजब्बिहूना अबनाअकुम, उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो उन्हें मार डालते थे? ये वो लोग थे जो ताकत की बुनियाद पर आगे बढ़ते थे। और अबना से मुराद क्या है? अबना से मुराद है लड़के। ये लोग रिवायत के मुताबिक जो छोटे बच्चे होते थे, एक खास उम्र में उनको ज़ुबह कर दे और उसको अपना अकीदा बना लिया था उन्होंने, छोटे बच्चों की भेंट चढ़ाना। जैसे कि अभी हिंदुस्तान के बाद इलाकों के अंदर जो जादू वगैरह करते हैं, वो छोटे बच्चों की भेंट या कुर्बानी चढ़ाते हैं, जो कि हराम है। मुसलमानों में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज दूसरे अकीदे के लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। फिर इसमें कुरान करीम में आयत आती है, यस्तहयून निसाअकुम, लड़कियों से सबकत कर जाते, यानी उन्हें जिंदा छोड़ देते थे। लड़कियों को जिंदा छोड़ते, लड़कों को मार डालते। फिर आपने देखा कि फिरौन के जमाने को बदलते हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो लड़कियों को मार डालते थे, लड़कों को छोड़ देते थे। ये जमाने की तब्दीलियां हैं या कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो हैं ये। लेकिन मार तौर लड़की को मारें या लड़के को मारें, जुल्म तो जुल्म है। कुरान ने दोनों का तस्करा किया, यानी अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि उसकी मखलूक में से किसी को मारा जाए। फिरौन ने एक बार ख्वाब में एक आग को देखा कि बैतुल मकदस से आई है और मिस्र को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कुप्तियों को मिस्र से निकाल लिया उसने, लेकिन उसने बनी इसराइल को कुछ ना कहा। ये बात उसे बहुत खौफनाक मालूम हुई। वो जादूगरों को और काहिनों को उसने बुलाया और पूछा कि इसकी ताबीर क्या है। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हलाकत का मूजिब होगा और तुम्हारा मुल्क तुमसे छीन लेगा। इस पर फिरौन ने हर बनी इसराइल के जो बच्चे पैदा हुए लड़के, उन सबको मारने का हुक्म दिया और शहर की हर दाया को बुलाया और कहा कि बनी इसराइल के जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो नौमौलूद बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं लड़के, उनको मारते जाओ और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। हत्ता के नौमौलूद यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम के कत्ल करने के इरादे पर भी 12,000 जिंदा मौजूद और 90,000 नौमौलूद लड़के मार दिए गए। यानी ये तादाद है, कितनी बड़ी तादाद लड़कों की मारी गई थी सिर्फ इस खौफ से कि वो नबी ना आ जाए जो इनकलाब लाए, ये तब्दीली लाए। हजरत मूसा अलैहि सलाम को इन तमाम लड़कों की ताकत दे दी गई। अगर वो जिंदा होते तो इन सब की कुव्वत और मूसा अलैहि सलाम की कुव्वत बराबर होती। इसी वजह से उनके मौजजात में एक मौजजा ये भी है कि उनका जोरे बाजू बहुत ज्यादा था। कहा जाता है कि सबसे मजबूत बाजू जो था वो हजरत मूसा अलैहि सलाम का था तमाम अंबिया में। लेकिन बहरहाल उनकी ताकत में भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत ही शामिल थी, हम तो यही कहते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के जिस साल ये सारे वाकयात पेश आ रहे थे और फिरौन लड़कों को मार रहा था, तो फिरौन ने यह हुक्म दिया कि एक साल बच्चों को मारो और एक साल जिंदा रहने दो। जिस साल के बच्चे जिंदा रखे जाते थे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए और जिस दूसरे साल मारे जाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस साल, जिस साल में लड़कों को मारना था। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे जिस तरह चाहे वो अपने इरादे की तकमील फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। और इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया कि वफी जालिकुम, यानी यह है कि जुबा और लड़कियों को जिंदा रखने की तरफ इशारा है इसमें कि वफी जालिकुम बला उन, यानी ऐसे तुम्हारे अमल के अंदर तो बला है यानी तकलीफ है, मुश्किलात है कि तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम बच्चों को मार रहे हो जिंदा। मिन रब्बिकुम, ये बला या मुश्किल कहां से उतर रही है? अल्लाह की तरफ से उतर रही है कि तुम पर मुश्किल आएगी और इसलिए आएगी कि तुम बच्चों को जुबा कर रहे हो और ये बलाए अजीम होगी। अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। आले फिरौन ने जब ये सारे मामलात देखे और फिरौन को अपना गलबा नसीब हुआ, इन हालात को अगर जरा सा तजी के साथ देखें तो बलाए अजीम और ये मुश्किलात का आना बनी इसराइल पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया कि तुम में किसी को अमल नहीं नजात दिलाने का। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने अपने फजल में ले लिया है। वफी जालिकुम, यानी जो नफसी सिफात का गलबा जो रूह कल्ब पर होता है वो दरअसल बलाए अजीम है, बहुत बड़ा इम्तहान है। और ये इम्तहान ऐसा है कि जब इंसान के पास ताकत आती है तो इंसान उस ताकत को इस्तेमाल करता है, यानी वो बला में मुबतला हो जाता है, मुश्किलात में मुबतला हो जाता है कि वो गलत ताकत को इस्तेमाल करे। अब कुरान करीम अगली आयात में ये बयान फरमा रहा है कि वह इज फरक ना, और याद करो ए बनी इसराइल जबकि हमने तुम्हारी नजात के लिए दरिया को चीरा। वाइज फरक ना कहकर यह बतलाया। यहां पर वाइज फरक ना कहकर बाहर की तरफ इशारा किया, दरिया की तरफ। यहां दरिया कुलजुम मुराद है, इस दरिया का नाम है दरिया कुलजुम, जो फारिस के दरियाओं में से एक दरिया है, या कोई और दरिया जिसका नाम इसाफ है ये भी दरिया का नाम है। यहां तक कि बनी इसराइल अपनी गिनती के मुताबिक 12 रास्तों में तकसीम हो गए, यानी जब वो पानी में उतरे तो 12 अलग अलग रास्ते उनके लिए बन गए। इसीलिए ये कहा जाता है कि अरब के 12 कबाइल बहुत मशहूर हैं और ये सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। फंजैनाकुम यानी तुमको किनारे लगाकर गर्क होने से बचा लिया, वागरकना और हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया। किनको डुबो दिया? आले फिरौन, फिरौन की कौम को। यहां जो अगला हिस्सा है आयत का, वह अंतुम तंजून, और हालत यह थी कि तुम आंखों से देख रहे थे, यानी तुम्हारे दुश्मन जब तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो हमारी कुदरत को हमने तुम्हें इस तरह दिखाया कि तुम जब पानी में दाखिल हुए हो तो हमने तुम्हारे लिए 12 रास्ते बना दिए, तुम्हारी 12 कबाइल बना दिए, और वो 12 के 12 तुम पानी के अंदर से ऐसे निकले जैसे खुश्की में से निकल रहे हो। ये हमारी कुदरत है। और जब वो उसमें पानी में आए तुम्हारा पीछा करते हुए, तो वो पानी एक हो गया और उसमें वो गर्क हो गए। वह अंतुम तक जरूर, ये नहीं कि ये सिर्फ ख्वाब में देख रहे थे, बल्कि हकीकत ये थी कि तुम उन्हें गर्क होते हुए देख रहे थे और अल्लाह ने तुम्हें उनसे निजात दी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन थे, तुम्हारे बच्चों को तबाह करते थे, तुम्हारी इज्जतों को लूटते थे, तुम्हें जिंदगी में सुकून के साथ रहने नहीं देते थे। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निजात दी और फिरौनियों को गर्क कर दिया, तो बनी इसराइल कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे दिल अब भी मुतमईन नहीं है कि फिरौन गर्क हुआ है या नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि फिरौन को बाहर फेंक दो, तो फिरौन को बाहर फेंक दिया गया। तो बनी इसराइल पर इतनी नेमतें कि जो जो चाहा वो उनको मिला। अल्लाह की बड़ी नेमतें इन पर रही है। अब छोटी सी बात मैं कहूंगा कि फिरौन उसके जो लश्कर है उस तरह गर्क कैसे हुआ। मरवी है कि जब फिरौन की हलाकत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम को रात के वक्त मिस्र से कहीं ले जा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को रात के वक्त चलने का हुक्म हुआ। आपने देखा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो हुक्म हुआ था मक्के से मदीने की तरफ जाने का, वो रात के वक्त ही हुआ था। और इबादत में भी रात ही का वक्त मुंतखब किया जाता है। असल में रात पर्दा होती है खालिक और खालिक के महबूब के दरमियान, इसलिए रात का तायुन किया जाता है अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए। तो रात को चलने का हुक्म दिया और फरमाया कि कुप्तियों से जेवरात आरियतन ले लो, यानी उधार ले लो, लेकिन जब निकलो तो एक दूसरे को बुलाए नहीं और सुबह तक सिर्फ इंतजार करें, और जब निकले तो अपने घरों के दरवाजों को खून से लीप दें, यानी उसके ऊपर खून लगा दें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि बनी इसराइल अपने घरों से चल चुके हैं। चुनांचे रात को चले, उस वक्त वो 6,20,000 जंगी थे, 20 साल के लड़के और 60 साल के बूढ़े इनके अलावा थे। कुप्ती इससे बेखबर थे, उन पर मौत वाक़ हो गई। वो मुर्दगान के दफन में मसरूफ हुए, यानी जो मरने वाले थे उनको दफनाने लगे, जिससे उनकी तलब में वो रुक गए, यानी जो मुर्दा थे उनको चूंकि वो दफना रहे थे इसलिए वो इनके साथ नहीं जा सके। बनी इसराइल जब रात को चले तो आगे जंगल में जाकर रास्ता भूल गए और उन्हें पता न चल सका कि कहां जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के बूढ़ों को बुलाकर सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो अपने भाइयों से वादा लिया कि जब मिस्र से बाहर निकलो तो मुझे भी साथ ले जाना, इस वजह से रास्ता बंद रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इनका मजार कहाँ है? उनके मजार का इल्म सिवाय एक बुढ़िया के किसी को ना था। इस बुढ़िया से दरियाफ्त किया गया तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर मैं बता दूं तो क्या मेरी मुंह मांगी बात मान लोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से पूछता हूं, जैसा वो फरमाएगा वही करूंगा। हुक्म हुआ कि इसे कह दीजिए कि तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। बूढ़ी ने कहा, मैं एक तवील उम्र की बूढ़ी हूं, चल नहीं सकती, मुझे एक सवारी दो और मिस्र से मुझे भी निकाल कर लेकर चलो। चुनाचे उसको एक दुनियावी सवाल था उसका, और आखिरत में ये चाहती थी कि जहां तेरी रिहाइश हो आखिरत में, वहीं तेरे साथ मैं भी रहूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरे सवाल दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो जा, पूरे किए जाएंगे। बूढ़ी ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार دریائے نیل کے اندر ہے، دعا فرمائیے کہ اس دریا سے پانی ہٹ جائے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے یا اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے مزار تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پانی پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو کھدوا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا جو صندوق تھا اس قبر سے نکال لیا۔ یہ سنوبر کا بنا ہوا تھا اور نکال کر اب یہ اپنی قوم کے ساتھ چل پڑے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا صندوق دریا کی موج سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نکالا۔ یہ وہ پہلا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور سب سے پہلے یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو عنایت ہوا اور اس طرح سے وراثت میں ان کو ملا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے صندوق کو اٹھایا گیا اور شام میں جا کر دفن کیا گیا، اس کے بعد ان پر راہ کھل گئی اور چل پڑے۔ حضرت ہارون علیہ السلام قوم کے آگے اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کے پیچھے چلنے کا، تاکہ تعاقب میں جو لوگ آ رہے ہیں ان پر نگاہ رکھ سکیں۔ جب فرعون کو علم ہوا تو قوم کو جمع کر کے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے نکل پڑے کہ یہ بنی اسرائیل کہاں چلے گئے، میرے جو ضیاع ہے یہ مجھ سے بغاوت کر کے جا رہی ہے کسی ایک شخص کے ساتھ۔ تعاقب ہونے لگا تو فرعون کا جو لشکر چلا، جو سامنے کا حصہ تھا لشکر کا، اس کی تعداد 17 لاکھ تھی۔ اس میں حامان بھی تھا، حامان بڑا تاریخی نام ہے۔ اس میں جتنے بھی تھے یہ لوگ 17 لاکھ، وہ 17 لاکھ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں کوئی گھوڑی نہیں تھی، صرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے، نر تھے صرف، مادہ کوئی نہیں تھی۔ اور ہر ایک کے سر پر ایک خول سا لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب بنی اسرائیل چل کر جب دریا کے بالکل کنارے پہنچے تو دیکھا کہ دریا اپنی پوری طغیانی کے ساتھ تھا، اونچائی کے ساتھ، یہاں تک کہ فرعون کا لشکر قریب آ گیا۔ یہ اشراق کا وقت تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو دیکھ کر اپنی جماعت سے کہا، یہ تو بہت چھوٹی سی جماعت ہے۔ ادھر بنی اسرائیل فرعونیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور حیرانگی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تو بھی ہم دکھ میں تھے، اب تمہاری پیدائش کے بعد بھی ہمیں تکلیف سے نجات نہیں، کیونکہ ہمارے دریا آگے ہیں، آگے بڑھے تو ڈوبتے ہیں، پیچھے فرعون ہمارے قریب آ پہنچا ہے جو ہمیں چھوڑے گا نہیں، اب کیا کریں؟ بتائیے تمہارے رب کا وعدہ کہاں گیا؟ یہ بنی اسرائیل ہے جن کو اتنی نعمتیں ملی لیکن یہ مشکل آئی، تو اس طرح سے کہنے لگے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور سے پیار کرنے والی امت، کبھی حضور سے پیار کرنے والوں نے سوال ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ گردنیں کٹ جائیں ان کے پیار میں، کٹتی چلی جائیں، کوئی بات نہیں۔ اور انہوں نے بہرحال اپنا انداز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میرا رب ان قریب کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور اللہ نے فرمایا، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ انہوں نے عصا مارا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر حکم ہوا، اب مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا مارا اور کہا، راستہ دیجئے اے ابو خالد۔ اتنا کہنے پر دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے، اور ہر راستہ پہاڑ کے برابر تھا، اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ 12 قبیلوں کے لیے یہ راستے بن گئے جن پر سے وہ لوگ گزرنا شروع ہو گئے۔ دریا پھٹنے پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور دھوپ تیز کر دی، جس سے وہ بالکل خشک ہو گئے۔ بنی اسرائیل اس میں کود پڑے لیکن ہر ایک کے راہ کے آگے پہاڑ کے برابر پانی حائل ہو گیا۔ وہی سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے راستہ بن گیا تو ہم بھی اس میں چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے اتنا پانی حائل ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ بنی اسرائیل جب پانی کے اندر چلے گئے اور راستہ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چلو۔ چنانچہ وہ چلتے رہے، ان کا راستہ بھی تمہارے راستہ جیسا ہے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو ان کی بری عادتوں کو دیکھ رہا ہے، جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اپنا عصا دائیں بائیں دریا کے پانی میں مارو۔ چنانچہ ایسا کرنے پر ہر ایک قبیلے کے مابین چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بن گئیں، پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بن گئیں، سوراخوں کی طرح۔ जिनसे वो सब एक दूसरे को देखकर बातें कर भी रहे थे, सुन भी रहे थे। इस तरह चलते चलते आखिरकार दरिया को अबूर करके बाहर निकल आए। जब मूसा सलाम की कौम दरिया से पार हो गई तो फिरौन का लश्कर दरिया के किनारे पर आ पहुंचा और देखा पहाड़ फटा हुआ है। फिरौन का लश्कर कहने लगा, देखो ये मेरे खौफ से फट गया है। फिरौन ने कहा कि ये मेरे खौफ है जिसकी वजह से ये दरिया फट गया। कौम ने कहा अगर तू खुदा है तो दरिया में चल जैसे मूसा अलैहिस्सलाम चले हैं। फिरौन सिया घोड़े पर सवार था, लश्कर में किसी की भी मादी घोड़ी न थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक तेज घोड़ी पर सवार होकर आ गया है। फिरौन के घोड़े ने जैसे ही देखा पीछे दौड़ने लगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम दरिया की तरफ चले गए और फिरौन का घोड़ा भी उस तरफ चला गया। फिरौन ने बहुत रोका अपने घोड़े को मगर वो न रुका, लेकिन अल्लाह को मंजूर इसी तरह था कि घोड़े की सरकशी की वजह से फिरौन की मौत वाकई हो। जब फिरौन पानी की तरफ गया तो सारी जो फौज थी उसने कहा कि फिरौन जब चला गया तो अब हम भी चलें, तो वो भी उसकी इताअत में पानी की तरफ चले गए और इस तरह से फिरौन का तमाम लश्कर पानी में जाने के बाद गर्क हो गया और अल्लाह ने पानी को बराबर करके उन्हें डुबो दिया। फिरौन ने डूबते वक्त कहा, मैं मानता हूं कि माबूद ही एक है और मैं ईमान लाया हूं उस माबूद पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूं। उधर बनी इसराइल देखकर कह रहे थे अब फिरौन बाहर आकर हमें कत्ल कर देगा। अल्लाह ताला के हुक्म से 620,000 अफराद दरिया से बाहर निकले जिनके सरों पर लोहे के जंजीर जकड़े हुए थे और फिरौन की लाश भी बाहर फेंकी गई, जिसको देखकर ऐसे मालूम होता था गोया वो सुर्ख रंग का बैल पड़ा हुआ है। इसके बाद जो डूबने वाले थे उनको पानी ने जाहिर कर दिया। ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से अल्लाह की ताईद के साथ एक बहुत बड़ा मुआजजा था। इसीलिए बनी इसराइल से कहा गया है कि तुम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब अगर तवज्जो दें तो बिल्कुल ऐसे ही किस्सा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है और उनको भी अल्लाह ने बहुत सारे मौजाद अता किए। चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे यानी बज़ाहिर पढ़े हुए नहीं थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या इस बात का इल्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ है। पूछा कि क्या आपको इस बात का भी इल्म है कि बनी इसराइल के साथ क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया जो बनी इसराइल के साथ हुआ था ऐसे बयान कर दिया गोया खुद आप मुलाहजा फरमा रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया बयान किया और साथ साथ ये भी बतला दिया कि जो अंबिया की इताअत करते हैं अल्लाह उनको सुरखरू करता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इल्म गैब को या इस इल्म को सुना देखा वो मुसलमान हो गए, और जो ना समझ सके वो अबू लहब और अबू जहल हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदियों को 10वें मुहर्रम के दिन रोज़ा रखते हुए देखा। फरमाया मा हज़ल यौम अल्लज़ी तसूमुनहु, इस दिन तुम्हारे रोज़े रखने का क्या सबब है, क्या वजह है? उन्होंने कहा वो बड़ा दिन है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को दरिया से निजात मिली और फिरौन और उसकी कौम गर्क हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदायगी शुक्र पर रोज़ा रखा, हम भी उनकी पैरवी करते हुए रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु व औला बि मूसा मिनकुम व अमरु बिस्सियामिही। मुस्लिम की हदीस है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की इक्तदा के ज्यादा लायक व हकदार हैं बनिस्बत तुम्हारे, इसके बाद आपने इस रोज़ा रखने का हुक्म दिया। कि रोज़ा जो आशूरे के दिन रखा जाता है इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में बयान किया गया कि कुफार का एक कैदी आशूरे के दिन भाग निकला तो उसके गिरफ्तार करने के लिए शहसवार रवाना किए गए। जब उसने शहसवारों को पीछे आते देखा और उसे यकीन हो गया कि अब मैं गिरफ्तार होने वाला हूं तो आसमान की तरफ सर उठाकर कहा अल्लाहुम्मा बिहक हाजिल यौमिल मुबारक अस्अलुका इन नजैनी मिनहुम या अल्लाह, अल्लाह इस मुबारक दिन के सदक़े में मुझे निजात दे। इसकी दुआ ऐसी मुस्तजाब हुई कि वो तमाम सवार फौरन ही अंधे हो गए और कैदी नजात पाकर आगे को निकल गया। इस रोज रोजा रखा, ख्वाब में उसे खिलाया पेट पिलाया गया और उसके बाद 20 साल जिंदा रहा, लेकिन उसे ताम और पानी की कभी जरूरत ही ना पड़ी। वो ख्वाब वाला ताम और शराब उसे काफी हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन की बड़ी फजीलत बयान की है, और ये आशूरा क्या है इसको अगर देखें हदीस के मुताबिक, तो वे फरमाते हैं कि इस दिन की फजीलत हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो मुबारक दिन है जिसे अल्लाह ताला ने बाकी तमाम दिनों पर फजीलत बख्शी है सिवाय रमजान के। जिसने इस दिन रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को वह हिस्सा अता फरमाएगा जो मलाइका और अंबिया अलैहिस्सलाम और सिद्दीकीन और सालिहीन को अता फरमाया, यानी वो इबादत मकबूल होगी। ये फजाइल रोजे के मुतालिक थे, नमाज के मुतालिक भी फजाइल अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। आशूरा के दिन की नमाज के मुतालिक सैयदना गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी एक तवील हदीस में फरमाते हैं कि जिसने आशूरे के दिन 4 रकात नमाज इस तरीके से पढ़ी कि हर रकात में 1 दफा फातिहा शरीफ और 50 दफा सूरह इखलास, तो उसके आइंदा जिंदगी के 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और मलाए आला में उसके लिए नूर के 1000 मेंबर तामीर किए जाएंगे। मसला यहां पर उलमा ने बयान किया है कि आशूरा की सारी रात जागना मुस्तहब है। चुनाचे हदीस शरीफ में आया है कि मन अहया लैलत आशूरा फकअन्नमा अब्दल्लाह बिइबादत मलाइकतिल मुकर्रबीन, जो आशूरा की सारी रात जागता रहा उसने गोया मुकर्रबीन मलाइका जैसे इबादत इलाही करके अल्लाह को खुश किया। अल्लाह ताला का यह एहसान है हम पर कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इबादत का सलीका सिखलाया, और इबादत के सलीके के साथ ही हमें यह भी बतलाया कि कैसे इबादत करनी चाहिए, और आशूरे की इबादत भी उसी में है। और दीगर इबादत जिनमें नमाज का कायम रखना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना शामिल है, ये सब भी अल्लाह ने हमें हुजूर के वसीले से सिखलाया। दुआ यह है कि अल्लाह ताला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान करीम की जो हमने आयात पढ़ी हैं इन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और समझने की और दूसरे लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने की हमें ये सआदत दे कि हम इस कुरान की खिदमत कर सकें। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।